الاستحاضہ استحاضہ کے مسائل، جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے دن شمار کرنے چاہیے اور باقی مدت میں استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ایام حیض گزرنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے۔ تو استحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ مسلسل بغیر رکے آتا رہتا ہے، یا پھر مہینے میں صرف 2-4 دن رک جائے اور باقی وقت آتا رہے۔ اصل میں یہ ایک بیماری ہے، بالکل اسی طرح جیسے جسم میں کسی بھی حصے سے خون نکلتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، چوٹ لگ جائے، انگلی سے خون نکل آیا یا ناک سے نکل آیا، اسی طرح جسم کے خاص حصے سے خون کا جاری ہونا ہوتا ہے۔ تو اس کے اور حیض اور نفاس کے مسائل جو ہیں فرق ہے۔ اس کو آپ ارریگولر پیریڈس بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہر وقت ہی اس کیفیت کا شکار رہنا کہ کبھی پاک ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، کچھ تو پورا مہینہ ہی رہتے ہیں، کچھ بیچ میں کچھ ہی دن خشک ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کے بارے میں احادیث دیکھیں گے تو اس کے بعد پہ ہر بندہ اپنے مسئلے کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہے، لہذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہوں، یعنی حیض میں باقاعدگی رہی ہو، یعنی ریگولیرٹی، کبھی جلدی اور کبھی دیر سے آتے رہے ہوں، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ مستحاضہ جو ان دنوں میں ہو، مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضہ تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب حیض کا خون ہو تو وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیض کے خون کا اور استحاضہ کے خون کا فرق جو ہے وہ رنگ سے دیکھا جائے گا، اور اسی طرح سمیل سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سا خون ہے دوسرا والا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے نکلنے کی جگہ فرق ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو خود سے اس کے بارے میں نہ اندازہ ہو تو اپنی ڈاکٹر کو پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹرز کو یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ بلڈ کا سورس کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ بتا سکتی ہیں آپ کو کہ کیا یہ آپ کا ریگولر بلیڈنگ کا بلڈ ہے یا دوسرا ہے۔ اور پھر جب ایک ہی چیز ہر ماہ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ انسان کا اپنا ذہن بھی سیٹ ہو جاتا ہے۔ جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہوں اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو، اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے۔ مثلا کسی کی اگر 5 تاریخ تھی اور پھر بعد میں باقاعدگی شروع ہو گئی، تو ہر ماہ پھر 5 تاریخ کو وہ حیض کا پہلا دن سمجھ لے گی۔ جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا، مثلا کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کی 7 تاریخ کو حیض آنا شروع ہوا، تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکامات پر عمل کرنا شروع کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے کہ یہ تو بالکل اس وقت ہوگا کہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا نا، کیونکہ یہ ایک آخری پہچان ہے، جب آپ کو خون اور رنگ میں بھی فرق نہ لگے، سمیل میں بھی کوئی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو بس یہ وہ صورت ہے جب پورا مہینہ ہی رہے، تو اس میں کبھی کم ہو کبھی زیادہ ہو، لیکن پھر وہ تاریخ جس پہ شروع میں پیریڈز آتے تھے اس کو ہی وہ دن سمجھا جائے گا۔ مذکورہ مستحاضہ کو اپنے جیسی خواتین، اپنے ملک، علاقے، عمر اور اپنے جتنے بچے جننے والی عورتیں वगैरह, यानी अपने इर्द गिर्द अपनी ही एज की जो औरतें हैं उनकी आदत को सामने रखते हुए मुद्दत हैज़ का तयन 6 या 7 दिन शुमार करने के बाद इस तहाज़ा के अहकाम पर अमल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक इलाके में रहने वाली औरतों का अमूमन सर्कल एक ही जैसा होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक मौसम से भी होता है, खुराक से भी होता है, तर्ज़ ज़िंदगी के साथ भी होता है। तो अमूमन एक मुल्क में रहने वाली ख़वातीन के प्रॉब्लम्स भी एक ही जैसे होते हैं। तो अगर अपना मसला ना समझ आ रहा हो तो फिर वो किसी दूसरे पे भी क्यास किया जा सकता है। और एक तवील रिवायत है जिससे इंशाल्लाह ताला बहुत सारी बातें सामने आएंगी। हज़रत हमना बिनते जहश रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मुझे कसरत से मुसलसल इस तहाज़ा का खून आया करता था। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त करने के लिए हाजिर हुई। इस वक्त आप मेरी बहन जैनब बिनते जहश के घर में थे। अजवाज मुतहरात में से थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और ये उनकी बहन। तो ये फिर क्या हुई, अल्लाह के नबी की बीवी की बहन यानी साली हुई। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मुझे इस तहाज़ा की बीमारी है और खून बड़ी कसरत से मुसलसल आता है जिसने मुझे नमाज रोज़े से रोक रखा है। इसके बारे में आपका क्या हुक्म है? आपने फरमाया, मैं तुम्हें रुई इस्तेमाल करने की हिदायत करता हूँ क्योंकि वो खून चूस लेती है। हज़रत हमना ने अर्ज़ किया, खून तो इससे ज़्यादा है। आपने इरशाद फरमाया कि रुई के ऊपर लंगोट कस लिया करो, यानी कपड़ा कस लिया करो। मैंने अर्ज़ किया, खून इससे भी ज़्यादा है। आपने फरमाया कि रुई की जगह कपड़ा इस्तेमाल करो। मैंने अर्ज़ किया, खून तो इससे भी ज़्यादा है, कसरत से जारी रहता है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें दो बातों का हुक्म देता हूँ, इन दो में से जिस पर चाहो अमल कर लो वो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, और अगर दोनों पर अमल करो तो तुम्हारी मर्जी। इस तहाजा शैतान की ठोकर में से एक ठोकर है, जबकि हैज़ तो तुम्हें 6 या 7 दिन ही आता है। इन दिनों का इल्म अल्लाह के पास है, लिहाजा 6 या 7 दिनों के बाद गुसल करो कि इस गुसल की वजह से पाक हो गई हो। 23-24 दिन नमाज पढ़ो और रोज़ा रखो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। फिर हर माह इसी तरह कर लिया करो जैसा कि हैज़ वाली औरतें हैज़ के वक्त करती हैं और पाक औरतें पाकीज़गी के वक्त करती हैं। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। तो आप देखिए कि कितनी वजाहत से इसमें सारे मसाइल आ गए। पहली बात यह है कि इनको सुनते वक्त शायद किसी के दिल में ये ख्याल आए कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना खुल के ये मसाइल क्यों पूछ रही है, जबकि रिश्तेदारी भी है। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी पूरी खोल के बताते हैं, फिर ही वो आपका इलाज करेगा। तो कोई भी दीन वाला या अपने वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए बिल्कुल इसी तरह थे कि जैसे कि मजहबी रहनुमाई लेने के लिए। और अगर इसमें बात खोल के ना बयान की जाए तो मसले का फ़र्क हो सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उस बीमारी पे या उस खून को संभालने के तरीकों पे भी तवज्जो दिला रहे हैं, इससे पता भी चलता है। और अगर उस दौर की खवातीन के हालात देखें तो उस वक़्त इतने जदीद इंतजाम नहीं थे जो आज के दौर में ऐसी चीज़ों को साफ़ रखने के होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने गोया कि यहाँ जिन चीज़ों का तذکرہ कर दिया, और अगर आज वही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग दीन के नाम पे छोटी छोटी बातें भी करते हैं कि अच्छा फिर ये भी जायज़ है और कि ये जायज़ नहीं। मुराद इसलिए कि जिस तरह भी मुमकिन हो खैस के खून को छुपाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको जाहिर नहीं करना चाहिए। अब ये बात हुई है तो यहाँ खुल के एक थोड़ी सी बात करने की भी ज़रूरत है। हमारे यहाँ बास कल्चर में ऐसा भी होता है कि उस कपड़े या उस पैड्स के बारे में भी कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि उसके साथ क्या किया जाए। कुछ लोग तो उसके लिए बास दफ़ा इस हद तक मतलब संजीदा होते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर इसको हमने कपड़े में या लिफाफे में डाल के पैक बंद कर दिया तो कोई ना कोई इसको ले सकता है, और खुदा ना हास्ता कोई जादू टूना इस पे हो सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें। फिर दूसरी तरफ एक और हद हुई और एक्सट्रीम से बढ़ गई बात, और वो क्या है कि खुलेआम ऐसी चीज़ें जो हैं वो डिस्पोज की जाती हैं। इन मुल्कों में तो चलें पता नहीं चलता कि जहाँ पे सफाई के लिए अच्छे इंतजाम आते हैं और आप अपने घर के ट्रैश को खुद ही लिफाफों में फेंकते हैं और फिर वो जल जाता है या कुछ भी उससे होता है, लेकिन वो मुल्क जहाँ कचरे के ढेर खुले होते हैं तो बस दफ़ा कुत्ते और बिल्लियाँ ऐसे चीज़ों को लिफाफों को फाड़ते हुए देखे गए, और वो एक तो गंदगी और ताफुन भी फैलता और बेहयाई भी तो फैलती है ना। जहाँ जहनी बहुत ज़्यादा ये बुलंदी ना हो, मेच्योरिटी ना हो, तो बच्चे लड़के लड़की ऐसी चीज़ों को देखें, तो इसके लिए क्या किया जाए? कुछ लोग हमारे यहाँ ये भी तसव्वुर रखते हैं कि इस कपड़े को ज़रूर जलाया ही जाए। तो बेहतरीन चीज़ तो ये है कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, उसके बाद उसको आप पानी के नीचे रख के उसकी गंदगी सारी बहा दें, फिर वो एक आम कपड़े का कपड़ा हो जाए, अगर इवन रुई है तो भी उस तरह हो जाएगा, और फिर उसको आप फेंक दें या रीयूज करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ रहने वालों को तो इस बात में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि घरों में बाप और भाई भी होते हैं, तो बात अब ऐसी चीज़ों की बातें लड़कियाँ खुलेआम कर रही होती हैं। पहले दौर में बहुत ही लिहाज होता था कि हत्ता कि माँ बेटी के बीच में भी इसके ऊपर बहुत पर्दा होता था, और माएँ भी बच्चियों को ऐसी बातें खुल के नहीं कहती थी। ठीक है, दोस्ती की हद तक और ज़रूरत के लिए कहना चाहिए, लेकिन इसको अब खुलेआम भाइयों के सामने भी बेटियां बहनें कह रही होती हैं मुझे नमाज नहीं पढ़नी, बापों के सामने ये बातें हो रही होती हैं, तो कुछ रिश्तों का तकद्दस होता है, हया का तकाजा है। हत्ता कि ये तो ऐसी चीज़ है कि औरतों को भी औरतों से नहीं डिस्कस करनी चाहिए बिला वजह। बात लोग बड़े बेबाक होकर कहते हैं कि हमें नहीं पढ़नी नमाज या हम इस कंडीशन में, कोशिश किया करें, हया का रंग है कि इसको अपने जैसी औरतों से भी छुपाया जाए, और बस लोगों को इशारे से समझ आ जाना चाहिए कि किसी औरत को नमाज नहीं पढ़नी। लोग बार बार कुरेदना चाहते हैं क्योंकि इन दिनों में फिर नमाज भी नहीं होती, तो घरों में अगर अनमेरिड बच्चियां हैं और वहाँ भाई भी हैं, और अल्लाह करे कि ऐसा घराना है कि जहाँ जमात से नमाज पढ़ने का रिवाज है, जैसे वक्त में इधर उधर हो जाना चाहिए, सरेआम बिल्कुल सबके बीच में कह देना कि मुझे नहीं पढ़नी, और इस तरह अपनी हया को ज़रा कम कर देना, ये दुरुस्त तरीका नहीं। यानी इन चीज़ों को बिल्कुल संजीदा लेना चाहिए, ना इसको खेल और मजाक का जरिया बनाना चाहिए। फिर एक और चीज़ के अपनी ही दोस्तों के साथ ऐसी बातें करना, ये कैसा है? यानी इवन पीरियड्स की बातें ठीक है, और बातें जो बात की ज़िंदगी की हैं उसको ना भी करें, लेकिन दो लड़कियां जब आपस में दोस्ती के नाम पे भी इन बातों को बहुत डिस्कस करती हैं, तो शैतान को इससे भी दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि वो तो हर लम्हे चाहता है कि हमारी नेकियों को ले ले, तो ज़रूरत के तहत कभी भी इसको दूसरे के साथ शेयर ना करें। मुस्तहाजा गुसल करने के बाद तमाम इबादात मामूल के मुताबिक अदा कर। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी एक जौजा हालत इस्तहाज़ा के बावजूद एतिकाफ़ किया करती थी। इसे बुखारी ने रिवायत किया। देखिए बताने का अंदाज़ कितना अच्छा है कि उनका नाम नहीं लिया, लेकिन मसला बता दिया कि इस हालत में जहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है तो फिर एतिकाफ़ भी किया जा सकता है। इससे हमारे दीन की वुसअत भी समझ आती है, और आप देखिए कि जब हम इल्म हासिल कर लेते हैं तो जहन से कितने बोझ भी तो दूर हो जाते हैं ना। जो औरतें इन दिनों में होती हैं वो हर वक्त परेशान ही होती हैं, नमाज पढ़ें कि ना पढ़ें, यानी एक करे और ना करे के बीच में। बल्कि ऊपर वाली हदीस में ये जो बात थी ना कि ये शैतान का चौका है, शैतान की ठोकर में से एक ठोकर है, ये शैतान की ठोकर से क्या मुराद है? इससे अमूमन तो ये मुराद ली गई, ज़्यादा लोग इसको इसी रंग में समझते हैं कि ये खून शैतान की किसी ठोकर के नतीजे में निकलता है, ये बात की। लेकिन जो इसका सही टेक्स्ट बनता है जब आप इसकी असल हदीस को खोलते हैं, तो इससे पता क्या चलता है कि शैतान इन दिनों में नमाज से चुका देता है। चौका मारने का लफ्ज़ है, ये इन्होंने ठोकर लिखी है, चुकाने का मतलब ये ना कि चूक गया, गलती हो गई मुझसे, यानी शैतान इन दिनों में औरत से ज़रूर गलती करा देता है। ये नहीं समझ आता कि ये ब्लड पीरियड्स का है या उसका है, तो ये शैतान का गोया के औरत को चुका देना है इस मामले में कि वो नमाज पढ़े कि ना पढ़े। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें जो हैं पता चल जाती हैं तो फिर दिल मुतमईन हो जाता है, और फिर इससे कोई कराहत नहीं करनी चाहिए। ये खून जो होता है ये बिल्कुल पाक खून है, और इसके बारे में दिल में कोई भी बोझ नहीं आना चाहिए, और इसको महसूस करते हुए अगर इंसान अपने आप को ऐसा फील करे कि मैं हर वक्त ही नापाक हूँ, नहीं, अल्लाह का दीन पता चल गया तो समझ आ गई, खैस का खून है वो गंदगी है, नापाकी है, उसके बारे में इंसान के जहन में सब कुछ ऐसा तसव्वुर आ सकता है कि जिससे गंदगी का हो, लेकिन जो ही आपको पता चला कि अब ये दूसरा खून है तो फिर उससे कराहत खाना, और फिर बाद लोग सवाल करते हैं कैसे नमाज पढ़ें, दिल नहीं मानता, और फिर ऐसे है वैसे, तो आप देखिए कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके दांत में से खून निकल रहा है, तो खून निकल रहा होता है ना, नमाज आप पढ़ते रहते हैं, आप उससे कराहत तो नहीं करते ना, तो इसलिए फिर दिल से ये खाम खा के वहम भी ख़त्म हो जाते हैं और ख़त्म हो जाने चाहिए। इससे गुसल करने के बाद मुस्तहाजा से सोहबत करना जायज़ है। हज़रत इकरमा रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उम्मे हबीबा रदी अल्लाहु अन्हा इस्तहाजा की मरीजा थी, और इनके शौहर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाहु अन्हो उम्मे हबीबा से गुसल कर लेने के बाद सोहबत किया करते थे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। तो इस बात से क्या पता चला कि जब नमाज पढ़ी जा सकती है, रोज़ा रखा जा सकता है और एतिकाफ तक किया जा सकता है, तो फिर जो हैज़ की पाबंदी के शौहर के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं होता वो भी इसमें हो सकता है। और ऑफ कोर्स अगर बीमारी के दिन है, औरत की तकलीफ है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर जिस लम्हे, हर वक्त तो नहीं है सा रहा होता या ब्लड, तो वो वक्त जिस वक्त औरत पाक है, यानी अगर उसके शौहर को जरूरत है तो फिर उसकी ख्वाहिश को वो पूरा कर सकती है।